Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और यदि उस अविद्या की निवृत्ति होके हमें ज्ञान बना रहता है तो वहां हमें किसी प्रकार की कोई भी जो है मने भय या किसी प्रकार की विपत्ति आदि हमारे सामने नहीं आती। और बड़ी विलक्षण बातें हैं और सरल रूप से ऐसे समझो, एक महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं। वो दृष्टांत क्या है, एक मदारी जो था, मदारी वो कुछ बकरी और कुछ बंदरियों को लेकर के अपना खेल दिखाता। एक बार वो जो है जाकर के एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था और विश्राम कर रहा था तो वहां पर जाकर के एक संत पहुंचे। उन्होंने देखा तो वहां पास में कुआं था, उन्होंने भी वहां से जलादि पिया और वो महात्मा भी वहीं वृक्ष की छाया में जाके बैठ गए, वो भी विश्राम करने लगे। मदारी वहां विश्राम कर रहा था, कुछ देर के बाद मदारी उठ के चल पड़ा तो महात्मा ने उससे पूछा, भाई ये बंदर बकरियां तू क्यों रखे? तो उसने कहा, इनसे मैं खेल दिखाता और अपनी जीवनचर्या चलाता। जब उसने ऐसा कहा तो महात्मा ने कहा कि तुम मेरे को भी खेल दिखा दे। उसने कहा, नहीं, अब आगे खेल दिखाएंगे जाके। उसने सोचा महात्मा से क्या मिलना, लेकिन महात्मा ने कहा, भाई मेरे को भी तू खेल दिखा दे, तू खेल दिखाने वाला है। तो कहने उसने सोचा, चलो कुछ नहीं, महात्मा कोई जड़ी बूटी ही दे दे, ऐसा सोच करके। और उसने कहा, चलो दिखला देते। महात्मा को खेल दिखाया, महात्मा ने खेल देख करके उसकी बड़ी प्रशंसा की और कहा, तू तो बड़ा भाई खिलाड़ी है। फिर महात्मा ने कहा, अच्छा तूने मेरे को खेल दिखाया, अब तेरे को भी मैं दिखा देता। कहा, दिखा दू? कहा, अच्छा बैठ जा तू। तो उसने सोचा, तो जड़ी बूटी शायद देखेंगे, देंगे और क्या खेल दिखाएंगे। तो कहा, बैठ जा। बैठ गया वो। कहा, तू अपनी आंख बंद कर ले और जब तक मैं न कहूं तब तक आंख खोलना नहीं। ये संकेत किया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली, 10-20 मिनट हो गए। अब जो है उसने, महात्मा ने कहा नहीं, लेकिन 10-20 मिनट हो गए तो कब तक बंद रखे। उसने खोल के देखा तो महात्मा वहां थे ही नहीं। अब जब महात्मा वहां नहीं थे तो फिर उसने नजर डाली तो उसका जो डमरू आदि था वो भी नहीं था, बंदर और बकरियां थी वो भी नहीं थी, अब सब गायब। सोचने लगा, इसने खेल सीख लिया और हमारे साधन भी ले गया, ये अब अपना खेल दिखाएगा, हमको ठग ले गया। ऐसा विचार करके बड़ा दुखी हुआ और दुखी होकर के वहां से चल पड़ा। इतने में क्या हुआ कि वो जब चल पड़ा तो उधर से काफी भीड़ आई। उस भीड़ में आगे एक हाथी था, हाथी की सूंड में एक माला थी और धीरे धीरे उसके समीप में आए, उसने वह माला अपनी सूंड से लेकर के उसके गले में डाल दी। और जब गले में डाल दी तो वो तो डरा, हाथी को सामने देख के, भीड़ को देख के, ने कहा, भाई ये सब क्या? तो वहां जो साथ में लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हमारे राज्य की ऐसी नियमावली है कि हमारे राज्य में जो है राजा का पुत्र ही जो है राजा नहीं होता है। हमारे यहां से जब राजा खत्म हो जाता है तो ये हाथी जिसके गले में माला डाल देता है और वही राजा हो जाता, आज से तुम हमारे राजा हो गए। भिखारी जो था मदारी सोचने लगा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, चलो महात्मा ने इसीलिए शायद गायब किया होगा, राजा बना दिया। गया, राजा बन गया, काफी समय तक राज्य में रहा, राज्य वैभव का भोग किया। लेकिन कुछ काल पर्यंत क्या हुआ, कहने लगे किसी दूसरे देश ने उस देश पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो वहां के सामंत मंत्री आदि आए और उन्होंने कहा कि भाई राजन, दूसरे देश ने चढ़ाई कर दी। तो कहा, क्या करना है? कहा, युद्ध करना है। तो कहा, हमको भी करना पड़ेगा? हाँ, आपको तो चलना ही पड़ेगा। बेचारा घबराया, कहां हम मदारी, कहां युद्ध करने लायक हैं, ये अच्छी आपत्ति आ गई, लेकिन चलना पड़ेगा, अब राजा बना। बैठ के हाथी पर आगे चलने लगा और जब चलने लगा उसको लेकर के, और वो लोग सब चल के जा रहे थे तो संयोग से वहीं से निकले, जिस वृक्ष के नीचे वह बाबा जी से मिला था वहीं से निकला। और जैसे ही उसने उस स्थल को देखा तो उसे स्मृति आ गई कि इसी वृक्ष के नीचे वह महात्मा मिले थे और उन महात्मा ने हमारी बकरी आदि सब लेकर के और हमें राजा तक पहुंचा दिया। लेकिन तब तक जैसे ही दृष्टि उस तरफ गई तो देखा कि महात्मा उसी के नीचे बैठे हुए, और देखा महात्मा बैठे हुए हैं तो उसके मन में आया कि ये आपत्ति भी शायद जो है महात्मा के पास जाए तो दूर हो जाए, क्योंकि उन्होंने राजा बना दिया और हो सकता है कि तो युद्ध से भी बच जाए। तो उन्होंने कहा चलो मिलने जाकर के पहुंचे, हाथी को खड़ा किया, महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा को प्रणाम किया, महात्मा ने कहा रे मदारी तू, जैसे ही कहा मदारी तू, कहा हां महाराज आपकी कृपा से ही मैं राजा बन गया। कहा ठीक है, अब कहा अब आपकी कृपा हो जाए तो इस युद्ध से बच जाऊं, ये युद्ध जो है हमको करने जाना पड़ रहा। कहा अच्छा, महात्मा ने कहा आंख बंद कर ली। जैसे ही उसने आंख बंद की तो देखा क्या कि वही बंदरियां, वही बकरियां, वही डमरू और वही बाबा जी, वहां पर न हाथी है न जो राजा है कुछ भी नहीं। जब देखा अपने को तो कहा महाराज ये क्या, कहा बस ये खेल है, तूने हमको खेल दिखाया, हमने तेरे को खेल दिखला दिया। ये तो है दृष्टांत, ये उसी मदारी की बात नहीं, ये सारे जीव ही क्या है मदारी। जैसे वह उन वनरियों को लेकर के और उन बकरियों को लेकर के अपने जीवन का निर्वाह करता था, वैसे हम सब लोग भी कर रहे हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। वनरियां क्या हैं तो क्या बतलाया, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां जो हैं वही क्या हैं, ये वनरियां। और वंदर का स्वभाव क्या होता, चंचलता है, कपि चंचल अति सहज स्वभाव। स्वभाव से ही बंदर कैसा होता, चलायमान होता। हमारी इंद्रियां भी कैसी हैं, चलायमान, और इन्हीं इंद्रियों की चलायमानता नृत्य को लेकर के हम क्या करते, अपने जीवन का निर्वाह कर रहे। कर्मेंद्रियों का स्वभाव क्या है, बकरियों की तरह से, बकरी कभी जो है खड़ी नहीं रहती, चलती रहेगी और जो आ जाएगा उसी में मुख। हम लोग भी क्या है, संसार में ये पदार्थ देखा तो इसको भी प्राप्त कर लूं, उसको भी लेने के लिए चल पड़ते, जो भी आ जाए हैं, गोलगप्पे खा लिए, फिर पेप्सी पी ली, फिर और आगे बढ़े, और कुछ दिखाई दे दिया काया भी ले लो। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब, ये तो एक दृष्टांत है, वनी सारे के सारे जीव क्या है, कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को लेकर के ही तो सारा अपना जीवन निर्वाह कर रहे। और इन कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों से हटकर के आगे सोचने का अवसर नहीं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारा व्यवहार हो रहा है, वो सब किसको लेकर के, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों को लेकर के। लेकिन होता क्या, जैसे उसके जो है वो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय जब जो है चली गई तो राजा बन गया था, लेकिन जो है उसको वो समझ नहीं पाया, उसी में जो है मस्त हो गया, आसक्त हो गया, तो फिर पुनः वही कर्म इंद्रिय और वही ज्ञान इंद्रिय प्राप्त हो गई, उन्हीं में फिर रहा। यही हम लोगों की स्थिति, हम भी उन्हीं में रत रहते हैं, और कभी कभी हमें ऐसा अवसर भी सुषुप्ति अवस्था आदि में आता है और उस आत्मा का हमें कुछ संदेश मिलता है, जहां पर ये इंद्रियां आदि सब गायब हो जाती हैं, और सब गायब हो जाती हैं तो हमें वहां पर एक आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन उस आनंद को हम पुनः प्राप्त नहीं कर पाते, पुनः वित्थान अवस्था हो जाती है, पुनः वही ज्ञान इंद्री कर्मेंद्री, पुनः वही झंझट हमारे सामने आ जाता है और यही प्रक्रिया चलती रहती। और यही दूसरी तरफ से देख लो, एक तो जो हो गई क्या ये अवस्था, और दूसरी अवस्था क्या तो जन्मना और मरना, पुनः पुनः जन्म मरण हो रहा। लेकिन जन्म मरण में हमने कभी विचार किया, ये जो जन्म हमारा हुआ है वो हमारे द्वारा हुआ, हमारे जान करके हुआ कि अनजान में हुआ? हमारा जो जन्म हुआ है, हम जो आए हैं इस रूप में, वो किसके द्वारा आए हैं ये हमें किसी को पता? और क्या जब जाओगे तो अभी तो जाकर के तैयारी करके चल देते हो यात्रा, लेकिन जब उस समय मृत्यु आती है तब हम जब जाते हैं तो क्या अपनी इच्छा से जाते? उस समय हम अपनी इच्छा से जाते नहीं। तो आना भी हमारा जो इच्छा से नहीं और जाना भी इच्छा से, लेकिन यहीं पर संकेत करते हैं, इसी को लेकर के हम उस मदारी की तरह से अपना जीवन निर्वाह करते रहते और वही स्थिति पुनः पुनः प्राप्त होती रहती। इसी को जन्म मरणम करके संकेत शंकराचार्य ने कर दिया। अब जो विद्यावान है तो उसके लिए क्या संकेत किया? उसके लिए संकेत कर दिया न तस्य प्राण उत्क्रामंती, ये संकेत किया, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, अर्थात उसे आना और जाना नहीं पड़ता। वो उस राज्य को प्राप्त कर लेता है, वो आनंद को प्राप्त कर लेता है, उसी की वास्तविक प्रगति होती है। कहने लगे ये कैसे होता? तो इसके उदाहरण आए। भीष्म पितामह की क्या थी? आई हुई मृत्यु से कहा पितामह भीष्म ने, खड़ी रहो वहीं, अभी जाने का योग नहीं। लेकिन क्या मृत्यु जब चढ़ाई करती है तो हम ऐसा कह पाते? हम ऐसा कह पाते नहीं। जैसे वहां राजा ने चढ़ाई की और यहां भी जो यमराज की जो सेना आती है तो हम जो है उसका कुछ भी बिगाड़ पाते नहीं। ब्रह्मानंद ने एक वजन लिखा, चलो चलो सखी अब जाना, पिया भेज दिया परवाना। एक दूत जबर चल आया, किया बीच नगर में ठाना, चलो चलो सखी अब जाना। गढ़ कोट किले गिरवाए, सब द्वार बंद करवाए, अब कहीं भी होए रहाना, चलो चलो सखी अब जाना। ये सारी स्थिति हो जाती, चारों तरफ से घेर लेता, हमारे सारे दरवाजों को बंद कर देता और फिर हमारी स्थिति उसमें रह जाती, हमें उसमें से भी निकलना। तो ये स्थिति होती, तो अब ये स्थिति। लेकिन कहने लगे वास्तव में जो हमारे यहां वर्णाश्रम की चर्चा थी, महाराज जी ने एक संन्यास जयंती पर लिखा भी, बड़ा सुंदर चर्चा उसमें आई। तो अब जो वर्णाश्रम की चर्चा थी, उस वर्णाश्रम के अंतर्गत क्या कहा था? ब्रह्मचर्याद ग्रही भवेद, ग्रही भूतवा बनी भवेद, बनी भूतवा प्रब्रजेत। ये जो संकेत किया, इस क्रम से जब व्यक्ति चलता है, इसको खेल को खेल समझ करके चलता है तो उसके जीवन में विद्या आती है, ज्ञान आता है, और ज्ञान आता है तो उसका जो है कल्याण हो जाता है, उसको ये मृत्यु परास्त नहीं कर पाता। इसलिए कालिदास ने साहित्य में इसी वेद के रहस्य को लेकर के लिखा, सहसवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम वार्धके मुनि वृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। शैशव अवस्था के अंतर्गत जिसने विद्या का अध्ययन किया और युवावस्था में जब विद्या को आपने सीख लिया तो उस विद्या का प्रयोग किया, गृहस्थ आश्रम में उस विद्या का प्रयोग किया और कहने लगे उसमें प्रयोग करके जब प्रैक्टिस हो जाती ना, पहले डॉक्टर की डिग्री तो ले लेते हैं, फिर किसी बड़े डॉक्टर के पास में रह करके प्रैक्टिस करते हैं, उससे प्रयोगात्मक, और जब प्रैक्टिस करते हो प्रयोगात्मक हो जाते हो तो आप भी अनुभवी बन जाते। इसलिए हमारे यहां क्या कहा जाता, एक शब्द है शिक्षा और दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ शब्द क्या है? दीक्षा। सुशिक्षित और दीक्षित है, शिक्षा और दीक्षा, अंतर यह है। इसलिए गांव में एक बड़ी कहावत कहते हैं कि बेटा पढ़े तो बहुत हो पर गुने, ये कहते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे यहां शिक्षा के साथ दीक्षा शब्द पड़ा, अर्थात जो विद्या हमने पढ़ी है उसका प्रयोग, उसकी लेबोरेटरी क्या है? गृहस्थ आश्रम। उसका प्रयोग कहां होता है? गृहस्थ आश्रम। वहां पर हमें क्या श्रम करना है? संकेत के तो शैशव अवस्था में हमने जो है उस विद्या को पढ़ा, कैसे जीवन जीना है, किस प्रकार से जीवन में हमें चलना है, कैसे कर्म करना है, ये सब जो है उसके अंतर्गत बताया जाता। हमें जीवन यात्रा कैसे करनी है तो उस जीवन यात्रा को जो है हमने पहले सीखा, शिक्षा ली, और वो शिक्षा का जो श्रम है वो कहां है? वही है ब्रह्मचर्य आश्रम। और उस ब्रह्मचर्य आश्रम में जब हमने वो सीख लिया तो उसके अनुकूल फिर हम मार्गन करते हैं, और वो मार्गन करने की क्रिया कहां है? तो गृहस्थ आश्रम। और जब उसको हमने कर लिया, मार्गन कर लिया, तो क्या होता है? जब आप किसी मार्ग को मार्गन कर लेते हो तो मंजिल पर पहुंचने के स्थिति में आ जाते हो, और जब वहां पहुंच जाते हो तो वहां विश्राम फिर करते हो। क्या करते हो? विश्राम करते हो, और अपने मार्ग का और पूर्व का सबका स्मरण करते हो कि हमने जो विद्या सीखी थी उनके अनुसार हम ठीक मंजिल पर पहुंच गए। ये वानप्रस्थी है। वानप्रस्थी माने अपने उसी आत्मा का, अपने मंजिल का, अपने लक्ष्य का चिंतन करना, यही वानप्रस्थत्व है। और जब वहां पर आप पहुंच गए तो उस मंजिल में फिर उसके पट खुल गए, है उसका कपाट खुल गया, तो उसमें जो बैठा हुआ देव उसके फिर आपको दर्शन भी हो जाता, तो ये संन्यास की स्थिति हो जाती। वहां सब कुछ प्रत्यक्त हो जाता, क्या रह जाता है, जिसको मिलना था उससे मेल हो जाता। तो इसलिए संकेत किया, सहसवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवनी विशेषनाम वार्धके मुनवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्तया। फिर वो योग के द्वारा जो है अंत में शरीर छोड़, वो योग क्या है, तो ये जो विद्या है यही उसका योग है, ये जो ज्ञान है यही योग है। इसलिए जब विद्या की स्थिति होती है, ज्ञान की स्थिति होती है और उसको क्रम के से लेकर के चलता है, तो कहने लगे अंत में जो है उसकी इच्छा मृत्यु हो जाती, जैसे पितामह भीष्म की हो। और भी चर्चा आती, लोकमान्य तिलक के विषय में संकेत आता कि उन्होंने जब मृत्यु आई तो उन्होंने भी क्या देखा, उन्होंने देखा इम दूतों की विमल ध्वजा जरा दृष्टि में आती है और युद्ध करती, देह युद्ध करती और देह हारती जाती है। किससे, कहा रोगों से, युद्ध करती रोगों से देह हारती जाती है। ये क्या है, यही तो सारी स्थिति है, यही तो शास्त्र बतलाते हैं। वहां पर जो है उन्होंने भी देखा कि जो है अब विमराज की जो है सेना आ गई, उसकी ध्वजा को देखा और देख रहे हैं, दूसरी तरफ भी देखा, केवल एक तरफ नहीं देखा, क्या देखा, यह आक्रमण तो हो रहा है और जो है वो सेना युद्ध कर रही है। कहा किससे कर रही, कहा शरीर से, और शरीर में क्या नाना प्रकार के रोगों को विकारों को वह ला रही। और यही तो पुरंजनी और पुरंजन की कथा में सुना, प्रज्वार कालकन्या और ये सब आए तो उसने नगर में आग लगा दी, है ना, ये सब तो किया। और जो जो पंच प्राण जो है इसको वहां सर्प करके कहा, ये भी रक्षा नहीं कर सका। तो ये सब जो है वहां कालकन्या आदि और जो है जो सबकी चर्चा, प्रज्वार आदि की चर्चा की, तो अवस्था के अनुसार क्या है, यही शरीर की स्थिति होती। लेकिन अब वो व्यक्ति जो है जिसने विद्या प्राप्त की, तो वो क्या देखता, वो देखता है कि यमराज की है सेना आ गई है और इससे शरीर नष्ट हो रहा है, लेकिन मैं इसमें दृष्टा बना हुआ। और ऐसा जो दृष्टा रहता है वो जानता है कि शरीर जो है वो तो धारण किया हुआ वस्त्र है, ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन हो रहा है लेकिन मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हो। और ऐसा जो व्यक्ति है वही इस वेदांत के सिद्धांत को प्राप्त कर लेता है, और वेदांत के सिद्धांत को जब प्राप्त कर लेता है, ये उसके जीवन में जब आ जाता है तो क्या होता, तो कहने लगे उसी के जीवन की प्रगति होती है, उसी के जीवन में वह नूतनता आती है, उसी के जीवन में वह रमणीयता आती है, वही प्रगति को प्राप्त होता है। और ये चीज जिसके जीवन में नहीं आ पाती तब तक वह प्रगति को प्राप्त, तो इसके लिए क्या चाहिए, कहा विद्या चाहिए। जैसे वामदारी आदि की चर्चा आई वैसे ही यहां, और भगवान शिव तो कैसे, जो महान है कहो मिलने से वह कैसे मिलेगा, वो तो मिलने के लिए तैयार, और उसके लिए तो इतनी सरस चर्चा कर दी। वहां कहा पत्र है, गीता में भी भगवान कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम है, तो पत्र फल कामित दे स्थिते सांबे, माने केवल पत्र और फल मात्र से ही वो जो सांब जो स्थित है जिसकी सदा स्थिति है वो क्या है, कहा सब कुछ दे देता। और फिर कहा भजसि कृपणम नृपंसु दुस्सेव्य महो कथम चेतः, तेरे चित्त के अंदर यह है कि इसकी हम सेवा कैसे कर सकते हैं, इसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ये ऐसा तुझे नहीं सोचना चाहिए, वो तो बड़ा सरल है। और सरलता क्या दिखलाई, कहा जो फल है जहर है जिसे कोई ग्रहण नहीं करता और वो फल उसको दे दो, और कॉरपोरेशन म्यूनिसिपैलिटी के कचड़े पर उगने वाला जो आग जिसका पुष्प किसी भी देवता पर नहीं चढ़ाया जाता और भी किसी काम नहीं आता, उस पुष्प को चढ़ा दो तो क्या दे देता है। तो उसके लिए संकेत किया, अर्क दौड़ प्रभृति कुसुमयी अर्चनम ते विधेयम तेन प्राप्त स्मर हर स्वराज्य मोक्ष लक्ष्मी संकेत किया। ये जो भगवान है उनका नाम ही रखा स्मर हर। वो क्या करते हैं, वो कहने लगे जब विद्या आती है ऐसे उसका जब ज्ञान होता है और वही तीसरा उनका ज्ञान नेत्र भी, तो कहने लगे वहां पर वो सबसे पहले कामना को ही जला देता और जब कामना को जला तो ऐसा स्मर हर वो क्या देने वाला। कहने लगे यदि कोई राज्य चाहता तो राज्य प्राप्त करा देता, लक्ष्मी चाहता तो लक्ष्मी प्राप्त करा देता और मोक्ष चाहता है तो मोक्ष भी प्राप्त करा देता। ऐसा वह देव है और उस देव से तुम भिन्न नहीं हो, वही देव रूप तुम हो, लेकिन हमने अविद्या के कारण उसको जो है परिधानों के कारण अपने को भिन्न मान ली और परिधान केवल है खेल के लिए, तो खेल को हम खेल न समझ करके खेल में ही हम आसक्त हो गए। अब इस खेल को खेल समझ करके करोगे तब जीवन में जो भगवान कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, तब तुम्हारे जीवन में वह कर्म करने की योग्यता आएगी और वो क्या आएगी, तब जो है नाविनन्नन्ति निष्कर्म्यम और कहा न कर्मसु अनुसज्जते, तब जो है कर्म में भी उसकी आसक्ति नहीं होगी और निष्कर्मता भी जो है प्रसन्नता नहीं होगी। क्या मतलब, आप देखते हो कोई कर्म सामने आया और आपने कहा इसको नहीं करेंगे, छोड़ दिया और छोड़ करके आप प्रसन्न होते, तो कहने लगे ऐसा ये निष्कर्मिता नहीं है। और आप जो है कर्म ढूंढने जा रहे हो और कर्म ढूंढने जा रहे हो उसमें कभी सफलता कभी असफलता मिलती है, तो कहने लगे वो भी वो नहीं करता। कैसे, उदाहरण के लिए जैसे जीवन में किसी व्यक्ति दो भाई है और बड़े भाई का विवाह हो रहा और आजकल लोग भी देखते क्या है कि एक लड़का होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, भाई बहने होंगे तो उनकी शादी करनी पड़ेगी और झंझट रहेगा इसलिए एक ही लड़का। लेकिन वो पहले क्या होता था, वो भाई भी यदि उसका छोटा भाई पढ़ने में कमजोर है अन्य योग्यता नहीं है तो भी उसका जीवन निर्वाह करता, सोचता था छोटा भाई हमारा कर्तव्य है भाई के नाते, ये सोच करके कर्म करता था, उस कर्म से हटता नहीं था, उस कर्म का त्याग नहीं करता। आज हम कर्म का त्याग भी करते है ना, और दूसरी तरफ और उसमें खुश होते इस झंझट से दूर हो गए, ये निष्कर्मिता में। दूसरी तरफ घर में मां बीमार है और मां जो है बीमार है तो उसके सेवा में तो किसको कर दिया, नौकर को कर दिया, हमारा कर्तव्य है मां सेवा करना, ये कर्म प्राप्त है, लेकिन वहां हमने नौकर को कर दिया, नौकर सेवा करेगा, नर्सों को कर दिया और हम कहां जा रहे, कहने लगे हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में ही, किस लिए, कहा समाज की सेवा करने के लिए। विचार करो वहां क्यों जा रहे हो, क्योंकि वहां तो अखबार में नाम निकलेगा कि ये सेवा करने वाले हैं, यहां हमने सेवा का त्याग किया और वहां सेवा का प्रदर्शन कर रहे, वहां कर्म ढूंढ रहे हैं। तो वो क्यों ढूंढ रहे हैं कि हमें जो है ये, तो इस प्रकार से एक तरफ कर्म में आसक्ति होना, वहां कर्म में हमारा आग्रह है और इधर कर्म का हम त्याग कर रहे हैं। तो कर्म के त्याग करने में जो तुम प्रसन्नता समझते हो, कहा कि ये निष्कर्मिता नहीं है, और कर्म जो तुम ढूंढ रहे हो वो कर्म भी वास्तव में तुम्हारा जो है दुखदायी होगा, वो भी तुमको यश देने वाला नहीं। भगवान कहते हैं कि कर्म में आसक्ति भी नहीं, दुराग्रह भी नहीं, कर्म को ढूंढता भी नहीं और आए हुए कर्म का वह परित्याग भी नहीं करता, जो कर्म आ गया है उस कर्म को करता है और उस कर्म को करते हुए और जो है उसमें आसक्त नहीं होता। इसको उन्होंने कहा नाविनन्नन्ति नैष्कर्म्यम, कर्म को छोड़ने से वह प्रसन्न नहीं होता है और कर्म में कहीं आसक्त भी नहीं। हम तो ढूंढते हमें कर्म मिल जाए और ये हम करें सेवा है क्योंकि हमारा अखबार में नाम आए, तो ये ऐसी भी आसक्ति उसकी नहीं रहती है, तो कर्म को ढूंढता भी नहीं है और कर्म का त्याग भी नहीं। सुसमो वही जो है सुंदर समन को प्राप्त होता है, सुसमो या परित्यागी, और वही वास्तव में क्या है, त्यागी है। और सो असंसक्त वही क्या है, वास्तव में असंसक्त है, और ऐसा जो असंसक्त है वही कर्म योगी है। और वो कर्मयोगी है तो संकेत भगवान ने कर दिया बुद्धि युक्तो जहातीय उवेशुक दुष्कृते, वो दोनों को पाप पुण्य और शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर देता है, अर्थात वहां पर जो है दोनों में उसकी समता हो जाती है और वो कर्म करते हुए भी वो कर्म उसे लिपायमान नहीं करता। वो व्यक्ति ही प्रगति को प्राप्त होता है और वो व्यक्ति ही है इस मृत्यु काल के अंतर्गत उस मृत्यु से भयभीत नहीं होता, उसकी इच्छा मृत्यु हो जाती है, वो योगी कहलाता। ये संकेत कर दिया गया, इसलिए ये हमारे जीवन की प्रगति है, ये हम समझें और हम अपने में ये न समझें कि ये सामर्थ्य हमारे में कैसी आएगी। तो भगवान ने जो कहा कि त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम, ये तो तेरे हृदय की दुर्बलता है, तूने जो विचार धारणा बना रखी है वो तेरी गलत है, अविद्या कृत है, इसलिए तेरे जीवन में विद्या आए और विद्या आएगी तब जो बनेगी वो वही वसो पवित्र मसीही, सारे वसुओं को पवित्र करने वाला तू है। आगे चर्चा नहीं कल। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय।